Om Shanti. Om Shanti. Good evening. How are you? Only fine. Excellent. मैंने सोचा था बोलेंगे excellent. अमृत वेला, मुरली, तीन बार ब्रह्मा भोजन, सारा दिन आत्मा को भी मिला, शरीर को भी मिला, तो 9 बजते-बजते excellent हो जाते हैं, है ना? अमृत वेला, वो भी शक्ति, मुरली की शक्ति, फिर सारा दिन ब्राह्मण परिवार के साथ, तो how are you? मतलब बहुत अच्छे। भगवान के बच्चों से तो ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि थैंक्स छोटेलाल भाई का कि एक बार कम से कम मिलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर वो बार बार नहीं पूछते, कहते कब आएंगे, तो एक बार भी मिलना नहीं हो, क्योंकि कार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जो हॉल है, हिस्ट्री हॉल है, ये हम सबके लक की, भाग्य की जो लॉक है उसको खोलने के निमित्त बना है। पूरे वर्ल्ड में जो भी आत्माएं हैं, उनका जो भाग्य है इस हॉल में आकर के चमका है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड में कोई ऐसा हॉल नहीं है जिसने 5000 साल से, वैसे भटके तो नहीं सतयुग त्रेता में, लेकिन 5000 साल से बिछड़ी हुई आत्माओं को भगवान से मिलाने में, और जो मिल गए उनके निश्चय को पक्का करने में, गहरा करने में, और प्रजापिता ब्रह्मा की अनुभूति दिलाने में मदद की हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। और भले ही हम चाहे, अब अगर हम अभी अपने से ऑनेस्टी से अगर ये पूछें कि क्या हम 24 घंटे एकदम पॉजिटिव स्टेज में रहते हैं, एकदम पॉजिटिव 24 घंटे, तो अगर 10 साल पहले पूछते तो एकदम कहते नहीं, अभी मैं नहीं कहूंगी नहीं, 8 घंटे तो सोते हैं, वो तो छुट्टी हो गई, 6 दिन में सोते 1 घंटा, 4 घंटा रात को, 5 घंटा सोते, 8 घंटा सोते, 10, कोई जितना भी सोते वो छुट्टी है, लेकिन 95% पॉजिटिव में अगर रहें, थोड़ा बहुत तो व्यर्थ एक्स्ट्रा जिसको बोले वो चलता है, तो हम लोग कितना भी इस हॉल के वातावरण को डाइल्यूट करने की कोशिश करें अपने संकल्पों से, तो भी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजापिता ब्रह्मा और वो फिर वत्स जो उस समय थे, उन्होंने जो वो देख देख करके बाबा को तपस्या की है, वो इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है कि आप उसको डाइल्यूट कर ही नहीं सकते। तो ऐसी तपस्या भूमि पर बैठने का, सुनने का और योग लगाने का जिसको चांस मिलता है, तो ये कहेंगे कि भाग्य ना खुल गया। ठीक है, तो आज जो पूरे विश्व के अंदर ब्राह्मण परिवार ने पढ़ाई की, तो सुप्रीम टीचर ने हम स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे, है ना? आज की सारी मुरली जो थी वो प्रश्नों की थी, अर्थात चेक करने के लिए थी। तो इस ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छा टाइटल है ज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर, वैसे तो काफी स्वमान की बातें मिली हुई हैं, और योग के सब्जेक्ट में, धारणा के सब्जेक्ट में, सेवा के सब्जेक्ट में, लेकिन ज्ञान के सब्जेक्ट में जो एक टाइटल मिला हुआ है वो है दर्पण। दर्पण, बाबा कहते आप ऐसे दर्पण बनो तो जो दूसरे को अपनी स्टेज स्पष्ट दिखाई दे, कहां पर मेकअप मेरा ठीक नहीं है। आपने कभी दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, 5 महाद्वीपों के अंदर कहीं भी बोलता हुआ दर्पण देखा है? एक भी वर्ड में बोलता हुआ दर्पण नहीं है, दर्पण साइलेंट होता है। तो जो हमारी ज्ञान शेयर करने की सेवा है वो तो वास्तव में बहुत लिमिटेड है ना, कितना सुनाएंगे, कोई को एक घंटा सुनाएंगे, कोई को आधा घंटा सुनाएंगे, लेकिन वास्तव में तो पूरे विश्व को जो ज्ञान की महसूसता करानी है वो करानी है अपने स्वरूप से। तो ऐसा स्वरूप हो तो दर्पण भी किस चीज का बना होता है, ग्लास, ग्लास खाली होगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्लास को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं और उसके बाद उसको दूसरे ग्लास से ढक देते हैं, फिर जाकर के वो दर्पण बनता है। अर्थात जब हम सिर्फ अपनी डायरीज में ज्ञान रखते हैं या अपनी बुद्धि में ज्ञान रखते हैं तो वो दर्पण का काम नहीं करता, लेकिन जब हम उसको अपने स्ट्रक्चर में लाते हैं, चरित्र में लाते हैं, अर्थात उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज करते, कुछ ज्ञान की बातें यहां के लिए है, रहम कहां के लिए है, रहम करो बाबा ने कहा आज, कहां के लिए, और स्नेह, स्नेह पूर्वक वाणी बोलो, स्नेह दिखाओ कहां के लिए, मुख के लिए, दृष्टि के लिए, चेहरे के लिए, माथे में भी शुभ भावना की रेखाएं हो, ये सब बाबा ने बोला ना। तो जब हम सब जो बुद्धि का ज्ञान है वो एनर्जी जो है संकल्पों के रूप में, संकल्प क्रिएट करेंगे तभी आगे जाएगी ना, तो जहां जरूरत है वो वहां पर काम करते हैं। हमें मुझे अपने में उसको सिर्फ धारण कर लेना है, जैसे सूरज जो है वो प्लानिंग नहीं करता, सूरज का टाइम टेबल कभी किसी ने देखा है, सूरज टाइम टेबल बनाता है कि मुझे अभी राइट साइड में जाना है, वहां जाना है, सूरज सिर्फ अपने स्वरूप में रहता है। फिर जिसको जो लेना है वो अपना टाइम टेबल बनाए कि मुझे तब उठना है जब सूर्य की पहली किरण आती है, दूसरा कहता है मुझे तब उठना है जब 12 बजे सूरज चढ़ जाता है क्योंकि मुझे मूर्ति सुखानी है, तीसरा कहते हैं सूर्य जब अस्त हो जाता है ना तो मैं थोड़ा ये काम करूंगा, जिससे कि होता है कि नहीं। तो सूरज अपनी स्थिति को दुनिया की जरूरतों के हिसाब से सेट नहीं करता, वो सदा अपने स्वरूप में सेट है, अपने कर्तव्य में सेट है। तो ये जो टाइटल है ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण, तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण पन के जो सब कर्तव्य हैं, वो देखो वो कर लिए हैं, ब्राह्मण पन के सब कर्तव्य। तो पहली बात तो उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मण पन के कर्तव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से ब्राह्मण पन के कर्तव्य, संगम युग पर हमको क्या क्या चीजें जरूर करनी है, अंधों की लांची बनना है, सबसे पहले पहले ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, सब बातें आप ठीक ही सुनाएंगे, लिस्ट संस्कार स्व परिवर्तन करना है ब्राह्मण पन का, ये कर ब्राह्मण माना बिल्कुल नीचे गिरना बंद, चाहे हम मिलीमीटर आगे बढ़ें रोज लेकिन नीचे नहीं गिर सकते, ब्राह्मण जीवन माना गिरना नहीं है, पवित्रता के मार्ग पर चले और फिर कभी पीछे हटे ही नहीं। तो सबसे पहले ब्राह्मण बनने का ये जो कर्तव्य है पवित्र बनना और पवित्र बनाना, तो ये बिजनेस कॉपर एज में नहीं चल सकता, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उस समय पवित्रता की जरूरत महसूस होगी, लेकिन बनाए कैसे और बने कैसे ये तो बहुत मुश्किल होगा। अभी ही पवित्र बनना और बनाना बहुत सहज है। अगर मैंने सच्ची पवित्रता का अनुभव किया है तो मैं दूसरे को बहुत ही सहज पवित्रता के मार्ग पर ला सकती हूँ। तो पहले पहले ये प्रश्न पूछें कि मेरी पवित्रता से कितनी आत्माओं को पवित्र जीवन की चॉइस करने की प्रेरणा मिली है। वो हम एक एक ब्राह्मण के हिस्से में 700 करोड़ 600 करोड़ लोग हैं तो कितने आएंगे? तुम्हें अपना हिस्सा पूरा कर लिया है क्या कोटा? कम से कम 108 तो सब ले लें, 16,000 ले लें। एक तो ये नंबर वन कर्तव्य है। दूसरा ये है कि विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो बैठे और बाबा को भुला ले, अर्थात बाप की अनुभूति करा दे, क्योंकि उनको बाबा का एड्रेस नहीं मालूम और बाबा उनके कहने से आएगा भी नहीं। होता है ना, कहते हैं आप जाइए दादी को बुला के लाएं, तो दादी किसके कहने से आएंगी? उनका कोई तो कनेक्शन होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कोई जाएगा और लेके आ जाएगा। हाँ, वो उनके साथ सेवाधारी है, काम करता है, उसको पता है इस समय दादी का आना है, जरूरी है। तो हम जो बाबा के साथ सेवा में पार्टनरशिप में है, तो हमें पता है कि ये जो है ना, यहाँ मैं काम नहीं कर सकती, यहाँ मुझे बाबा को बुलाना पड़ेगा। तो हम बाबा को नॉक करके फटाफट बुला सकते, और बाबा को पता है कि ये मेरे जो पार्टनरशिप वाले बच्चे हैं, ये मुझे ठीक काम के लिए बुला रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा मेरी टांग टूट गई है प्लीज आ जाओ, वो तो डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन कोई बहुत विकारों से जकड़ी हुई आत्मा है, कर्म बंधन अति है, और ऐसा लग रहा है कि ये आत्मा के कर्म बंधन की जो कहानी है वो हमसे नहीं तोड़े जा सकते, तो हम बाबा को इमर्ज करके, बाबा को इनवाइट करके, अभी ज्यादा मधुबन में लोग आए हुए हैं क्या, इसलिए आ जाते हैं। तो ये दूसरा कर्तव्य हमारा है कि चेक करें कि क्या हम बाबा को निमंत्रण देना सीख गए हैं और बाबा को बुलाना सीख गए हैं, और हम समय प्रति समय बाबा को बुला करके बाबा से जो कर्तव्य कराना है वो करना आता है। सिर्फ अभी संगम पर ही ये हो सकता है, बाबा को पकड़ करके रखना। तीसरी बात है, वो भी कभी भी नहीं होती, सिर्फ ब्राह्मणपन में होती है, वो ये है, जब से हमने बाबा से जाना आप ये शरीर नहीं हो आत्मा हो, तब से बुद्धि में बाबा ने ये डाल दिया कि आपको, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में आए हो, आपको ये शरीर छोड़ना है। तो जो चीज छोड़नी है उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ब्राह्मणपन में ये जो कर्तव्य है, मरने की तैयारी किसी और जीवन में नहीं करते, ये पूरा जीवन ही मरने की तैयारी है। तो जहां जाने की तैयारी होती है तो वो तो कभी भूलता नहीं ना, तो क्या मुझे अंतिम क्षण याद रहता है, काल याद रहता है? काल बस अभी यहां बैठी हूं, अभी भी शरीर छूट सकता है, ऐसे ही बैठी हूं जो शरीर छूट सकता है, याद रहता है? कालों के काल के बच्चे हैं, कालों के काल के बच्चों को काल याद न रहे। कालों का काल आया ही सिर्फ इसलिए है मुझे ले जाने की, उसका दूसरा कोई पर्पज ही नहीं है दुनिया में आने का। तो उसको टीचर बनना पड़ा क्योंकि मुझे जाना आता ही नहीं, बाप उसको बनना पड़ा क्योंकि मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं हूं। तो चलो 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 चलो, कुछ खिला के, टोली खिला के, कुछ ऐसे करके, कुछ प्यार करके, 70 साल से तैयार कर रहा है, चलो चलो। कालों का काल है, लेने के लिए आया है, और मैं अंतिम क्षण को, अंतिम समय को याद ही नहीं कर रहा हूं, तो कैसे फिर मैं जाने की तैयारी करूंगा। तो मरने की तैयारी माना दो बातें, रोज की दो बातें। एक तो कोई भी जो संबंध है, कोई भी संबंध में कहीं पर भी संस्कार स्वभाव के जो टक्कर में आकर के या किसी और बात के कारण हमारा जो है वो कहीं भी कर्म बंधन न बने किसी के साथ भी। वो कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा के साथ मेरा जो है बंधन बन गया है? आप अभी बैठे हैं यहाँ पर और आप बाबा को याद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई आत्मा याद आ रही है। तो मना बंधन है। अब बैठे कोई याद नहीं आए, एकदम दिल की जो ड्राइंग रूम है, मन का जो वेटिंग रूम है, कहीं भी ना वेटिंग रूम में ना ड्राइंग रूम में कहीं भी कोई नहीं है। अब सुबह से शाम तक कितनों के साथ हम कर्म करते हैं, लेकिन जब ऐसे करके बैठे कोई नहीं, एक निराकार बाबा याद आई, तो वो जरूर ही जब सारा समय हम कर्म करते हैं वो संपूर्ण कर्म करने पड़ेंगे। अपूर्ण कर्म करते हैं तो लटके रह जाते हैं। संपूर्ण कर्म माना वो कर्म में आते हुए भी अभी कर्म में आ भी रहे हैं, है तो सब देह, लेकिन एकदम यहाँ पर बुद्धि में आत्मा टिकी हुई है, एकदम पकड़ा हुआ है बुद्धि से आत्मा के साथ कर्म कर रहे हैं। गुजरात का, मद्रास का, बिहार का, यहाँ का, 15 साल से 20 साल से ये सब जो आइडेंटिटीज हैं, पहचान है, वो झूठी पहचान है, टेम्पररी पहचान है। उससे कोई ना कोई बंधन बन जाएगा, लेकिन आत्मा देखेंगे तो फिर कर्म के अंदर में कोई भी ऐसी संकल्प नहीं चलेगी जिसके कारण मुझे बाद में इनको याद करना पड़े। आजकल के हिसाब से जो भाषा है, क्योंकि जब हॉल में बिठाना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है, तो कंट्री का नाम लिया जाता है, स्टेट का नाम लिया जाता है ना, फिजिकल आइडेंटिटी का नाम लिया जाता है, युगल यहाँ है, कुमारियां यहाँ हैं, टीचर्स यहाँ हैं, ये सारी जो आइडेंटिटी है काम के लिए, वो मुझे कर्म करते हुए मुझे याद ना आए, तब मेरा किसी के साथ भी खाता नहीं जुटेगा। एक तो ये पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप है किसी भी कर्म संबंध में आने से पहले या उसके समय अगर आपने किसी से जरा से भी अपनी कोई अपेक्षा, इच्छा, एक्सपेक्टेशन या इच्छा, डिजायर कि क्योंकि ये ऐसे हैं, इनको ऐसे मेरे साथ करना चाहिए, क्योंकि ये पुराने हैं तो पुराने को ऐसा करना चाहिए, बड़े हैं, बड़े को ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा भी किया तो गए। कुछ ना कुछ ऐसा कोई है आप में से, शायद कोई बहुत महालक्की बैठा हुआ हो कि वो जो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे ऐसा करें वो 100% वैसा ही करते हैं। ऐसा कोई लक्की बैठा हुआ है? मैं तो आज तक नहीं मिली है इतने देशों में जाकर के, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी इच्छा प्रमाण, हमारी अपेक्षा प्रमाण सारा समय कुछ कार्य करे। और वो करे भी क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भी तो अपूर्ण हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। वो तो अच्छी बात है, थैंक्स बाबा। वो नई इच्छा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए दूसरा जो स्टेप है, एक तो कोई भी टेम्पररी पहचान बुद्धि में ना हो, और दूसरी कोई भी अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, तो कर्म हो जाएगा, वो बुद्धि में बार बार परेशान नहीं करेगा। तो अगर ये ध्यान रखते हैं तो सारे दिन में बीच बीच में जब भी योग का समय होता है तो बुद्धि स्थिर हो सकती है। फिर और एक ब्राह्मणपन का कर्तव्य है कि हम अपनी अपनी प्लानिंग, जिसको कहते हैं पर्सनल एजेंडा, हमें क्या करना है। हम सत्युग त्रेता में तो बाबा ने कहा कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन द्वापर से जब होगा ना, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, तो हम अपने आप डिसाइड करेंगे हमें क्या बनना है। लेकिन विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी, ये सिर्फ जब बाबा उपस्थित है, संगम पर है और ब्राह्मण पने में हमें, सिर्फ तभी ये ऑक्यूपेशन हो सकता है, और कभी नहीं हो सकता। विश्व सेवाधारी, तो विश्व सेवाधारी माना अपनी जो हदें हैं, जो मेरा मेरा अंतिम जन्म का मेरा है, उसे क्रॉस करके अपने को बाबा को ऑफर करना। मेरे दो बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, भाई है, वो क्रॉस करके, जिसको बाबा ने कहा बाप को देखो और अर्जुन बनो। अर्जुन बाप, अर्जुन माना इनिशिएटिव लेने वाला, ऑफर करने वाला, नंबर वन में अपने आप करने वाला। तो वो ब्राह्मण पन का कर्तव्य, या तो जितनी मेरी क्षमता है अपने परिवार का कल्याण कर रही हूं, अपना कल्याण कर रही हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे विश्व के लिए मैं क्या क्या स्टेप ले रही हूं। तो ये रोज की जो चेकिंग है कि बाबा से मैंने विश्व कल्याण के लिए क्या क्या सीखा है, विश्व को आज क्या चाहिए, पूरे विश्व को क्या चाहिए, जहां चले जाओ क्या चाहिए, शांति चाहिए और प्यार चाहिए, फिर तो सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, धन भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चाहिए। 10 साल पहले देखते कुछ और, अभी की जो स्टेज आ चुकी है, अभी बहुत ज्यादा डर में है दुनिया, बहुत डर है, बहुत डर है, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। अभी हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमें कम से कम कल का पता है, ठीक होगा, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन जिन लोगों को कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब होगा कि नहीं होगा, कल भी ज्ञान स्वरूप में ऐसी ही सभा लगी थी, तो वहां भी शेयर कर रही थी कि कुछ समय पहले कैरिबियन आइलैंड्स में बाबा के जो सेंटर हैं, 40 साल हो गए हैं, आप लोग जो मैप को देखते हैं उनको पता होगा कहाँ है कैरिबियन, कितने लोगों को पता है कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ है। अमेरिका तो देखा है, अमेरिका एक ऊपर वाला अमेरिका है, एक नीचे वाला है, एक बीच वाला है। तो बीच वाले के अगर यहाँ सामने बैठो तो राइट साइड में वो समुद्र के अंदर ऐसी बिंदी 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 है, छोटी छोटी बिंदी है, आप सोचो इतना बड़ा समुद्र, उसके अंदर ये बिंदी, माना टापू है, और उस टापू में 40 साल से भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, 40 साल से, और 40 साल से वो कौन लोग हैं, उन टापुओं में कौन लोग हैं। तो 1937 में जब बाबा का आना हुआ, तो 37 से लेकर के 40 के बीच में सिंध में ऐसी लहर थी, और उससे भी थोड़ा पहले 30 की शुरुआत में ही कि उन टापुओं के अंदर लोगों ने जाकर के देखा, प्रकृति स्वर्ग जैसी थी, बिल्कुल बहुत स्वर्ग, पानी है और अच्छी अच्छी पहाड़ भी है, ग्रीनरी भी है। तो कुछ अमीर लोग उस समय जहां पर बाबा थे साकार में, तो सिंध परिवार के हीरे जवाहरातों का बिजनेस करने वाले खूब अपने बिजनेस को लेके वहां चले गए। याद है जब शुरू में बाबा ने के पास माताएं आती थी, पवित्र बनती थी, उनके हस्बैंड आते थे और उनको मारते थे, तो ये वहां से आते थे। तो उनको पता तो पड़ा कि दादा लेखराज कुछ ऐसे है और वो हमारे लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अब वो 40 साल में तो उन्होंने वहां पर अपने महल बना लिए हैं, लेकिन अब उनको दिखाई पड़ रहा है विनाश, क्योंकि उन टापुओं के अंदर सारा जो जिंदगी है वो आधारित है एक जहाज के ऊपर, क्योंकि कुछ भी तो नहीं है, दुनिया तो है ही नहीं, पानी ही पानी है। तो वो यूरोप से जहाज आते हैं, 15-20 मंजिल का जहाज आता है, उसमें 3,000-4,000 लोग होते हैं। वो 3 दिन आके टापू पे खड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हीरे खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, बस उसी से ही ये टापू चलता है। और अभी सब देशों में युद्ध चलना शुरू हो गया, दुश्मनी शुरू हो गई है। तो 40 साल से वो एक जहाज आता था और सारे टापू में चर्चा ही यही होती है, जहाज आ गया, जहाज आ गया, कस्टमर आ गए, कस्टमर आ गए। तो कस्टमर्स को तो वो मुर्गी जैसे देखते हैं, पकड़ो इसको, टूरिस्ट को। तो ये उनकी उनके साथ रिलेशन थी। और अभी बैन लग जाता है, युद्ध हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो जहाज तो उनके अभी जब मेरा जाना हुआ तो वहां की लोकल बहनों ने लेक्चर्स जब रखे तो वो सब इतने अमीर अमीर लोग कितने सुखी रहते थे, स्वर्ग समझते। वो आए तो उनके चेहरे देखने वाले थे, रहते महल में है, बना दिया ना पहले से, तो क्यों आप दुखी हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कल हमारे साथ क्या होगा। फिर हम पूछते हैं कि आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी को? हाँ, हम जसोदा मैया को जानते हैं, हम बाबा को जानते हैं। और कहां बैठे लिया तो कुछ नहीं, जसोदा मैया को जानते हैं हम, शुरू से जानते हैं आपकी संस्था में क्या हो रहा है। तो भगवान जब आया तो उसने जिस समय आवाज बच्चों को दी, जिन बच्चों ने सब कुछ छोड़ करके उस आवाज का रिस्पॉन्ड दिया, सिर्फ उनको डर नहीं है किसी चीज का, बाकी सबको तो अपने भविष्य की, अपने बच्चों जो भी रचना रची है उसकी चिंता है। तो अब उनका डर दूर करने के लिए हमको क्या सीखना है? बाबा जब आते हैं, अभी भी तो मिले ना, अभी मिले कि अभी मिलेंगे 30 को, ये सब मिलने वाली सभा बैठी है, मिल गए ना, मिल लिए ना, मिल के बैठे हैं ना। तो देखा बाबा आए तो बाबा ने क्या दिया हमको, कितनी खुशी दी। किसी को भी चाहे अपने तन का डर है, धन का डर है, मन का डर है, कोई रहा क्या? नहीं। तो ऐसे ही हम कोई भी चीज को अपना आधार बना करके ना बैठें तो हम दुनिया का डर दूर कर सकते हैं। अभी आप लोग जानते हैं शायद, परिचय कुछ ना कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना कि मेरा नाम क्या है और कहां से है ना, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा उन्होंने बोर्ड में। तो आप लोग वैसे भी जानते हैं ज्ञान से कि विदेशों में जो सेंटर्स हैं, अभी जैसे कि दो बातें जो बोला, काल याद रखते ना, और दूसरा कोई भी चीज का आधार नहीं, क्योंकि जो भी बाबा ने सेवा के लिए वहां पर बच्चे भेजे हैं वो अच्छी तरह से उनको पता है कि कल क्या होना है, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि विदेश से आए हैं, है ना, कल क्या होना है। तो हम किसी चीज को वहां पकड़ के बैठेंगे? मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे 1,000 स्टूडेंट्स हों, लेकिन मेरे नहीं है। और यहां मेरे क्योंकि यहां से कहां जाएंगे? तो फायदा तो यहां भी, जहां पर भी हम हो, यहां से भी तो परमधाम जाना है ना, तो ये भी तो फॉरेन है। तो इसलिए अंतिम समय जब याद रहता है तो हम कोई भी चीज को, चाहे सेवा भी है वो भी तो टेम्पररी है, आज मुझे कुछ हो जाता है मैं वो सेवा नहीं कर पाऊंगी तो वो भी तो छूट गई, मुख बंद हो जाए, टांगे चले जाए, कुछ भी तो जा सकता है, कर पाएंगे। और दूसरा, दिन प्रतिदिन भाग्य की जो रेखाएं हैं वो अभी तो बंद होने का टाइम आ गया ना, फिक्स होने का टाइम आ गया, जिसको जो मिला वो मिला। तो आज से कुछ समय पहले तक भी पॉसिबल था कि आप फ्री होकर के जो करना चाहो करो, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर में ऐसे रावण कानून बना रहा है कि आप सांस भी लेना चाहो तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे कानून बनते जा रहे हैं। तो उन कानूनों में से मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूं। ये कितना टाइम हो गया, खत्म जब करना है तो बता देना हा? कि यहां पर अगर हम कोई चार चित्र लेकर के खड़े हो जाएंगे, किसी को भी समझाएंगे, तो हमें कोई मना करेगा नहीं, कहीं भी खड़े हो जाओ समझाओ। तो पहले विदेश में भी ऐसा पॉसिबल था, मतलब वहां के ही लोग कोई चित्र लेकर के पार्क में खड़ा होकर समझाना चाहते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे आप कोई भी पब्लिक में कोई भी प्रकार से ओपन कार्य करना चाहो आपको 15-20 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है और हर एक चीज दिखानी पड़ती है। तो जो उस समय खड़े खड़े ज्ञान ले लेते थे, ब्राह्मण बन जाते थे, अभी तो ढूंढना ही मुश्किल है ब्राह्मणों को। फिर दूसरा, जब हमको बाबा ने भेजा था कि बच्चे जाओ और सेवा शुरू हुई थी, तब बस गए और उसको कहते एक चीज होती है जिसको कहते वीजा, परमिशन होते है ना, वीजा लिया और सेवा करो। और अभी क्या नियम हो गए हैं बताएं, घबरा तो नहीं जाएंगे। अगर अभी किसी को वहां रहना है तो अब उनको अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है, उनकी 15-20 प्रकार की चेकिंग होती है, ब्लड की 10-12 प्रकार की ब्लड की चेकिंग होती है। दुनिया में गंदी से गंदी जो बीमारियां हैं, अब हम उनको कितना भी बताएं कि हम तो स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, हम तो संपूर्ण पवित्र जीवन जीते हैं, हमारी ये चेकिंग क्यों कर रहे हो, नहीं, वो सारी चेकिंग होती है, ब्रेन की चेकिंग होती है, हम मतलब पूरा जो हमारा अंदर का ढांचा है वो उस फॉरेन गवर्नमेंट के कंप्यूटर में रहता है हमेशा, पूरा जो एक एक सेल है शरीर का, कोई भी प्रकार से फॉरेनर्स जो हैं वहां पर अभी खुल्लम खुल्ला। अच्छा, ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल चेकिंग है ना, बायोलॉजी की चेकिंग हो गई। फिर होती है बुद्धि की चेकिंग। वो लोग ये नहीं चाहते कि दूसरे देशों की जो संस्कृति है वो उनके पास आए, रावण यही चाहता है ना, माया बनी रहे, भगवान नहीं आए कहीं पर। तो वो ये नहीं चाहते कि आध्यात्मिकता जो है वो इंडिया से आए, है ना, वो वहां भी तो क्रिश्चियनिटी है ना, तो वो क्रिश्चियन लोग जो करना चाहते हैं करें। तो उसके लिए उन्होंने ये जरूरी कर दिया है कि जो भी फॉरेनर्स यहां पर रहेंगे वो रशिया की सारी हिस्ट्री को पढ़ें, उसको समझें और उसका टेस्ट दें, और वो जब टेस्ट पास हो जाएंगे तो उनको वीजा मिलेगा रहने के लिए, जरूरत ही नहीं फिर जाने जाने के लिए तो बात ही नहीं है, सेवा की बात है, सेवा के लिए तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी बात कि वो चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर आप किसी जगह पर देखते हैं कि लोगों को लोगों की तरह से बिहेव नहीं किया जा रहा है ना, अगर उनको दबाया जाता है, उनको दुखी किया जाता है, उनके अधिकार नहीं दिए जाते, और आप अपने देश में देखते हैं कि फ्रीडम है, अभी यहां तो कितनी फ्रीडम है, गाय को भी देखो कितनी फ्रीडम है ना, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। तो जब हम वहां जाके देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि कुछ हो, हम लोगों को भी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है आप लोग जाके बात करो ठीक हो जाएगा, आप अपने बॉस को जाके समझाओ, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनको डर लगता है कि विदेश के लोग आके हमारी जनता की बुद्धि को भटका ना दे। तो जैसे ये दबे हुए हैं वो दबे हुए ही रहे, इनको कोई खोल ना दे। तो इसलिए वो अभी एक दूसरा उन्होंने टेस्ट डाला, एक तो हिस्ट्री का टेस्ट डाला है, दूसरा टेस्ट डाला है कि जो भी यहाँ पर आएगा काम करने के लिए, रहने के लिए, उसको रशिया के सब लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वो लॉ दिखाता है कि फॉरेनर्स यहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जिससे कि आपको ज्ञान हो कि आपको ये राइट नहीं है, इसलिए हम आपको जेल में डाल रहे हैं, नहीं तो वो केस ना कर दे फॉरेन कंट्री में जाके। तो ये दूसरा टेस्ट है, सारे रशियन लॉज की जानकारी और उसका टेस्ट देना है कि आपको पता है उसमें पास होना है। आप घबरा गए थोड़ा सा। और तीसरी, टूरिस्ट वीजा में तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, घूम के आ गए तो ब्रह्मा कुमारी तो टूरिस्ट के रूप में नहीं रहते ना, तो रहते हैं परमानेंट। और तीसरा है, तीसरा टेस्ट भाषा का टेस्ट, पूरी तरह से आप भाषा को जानते हो, पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, सुनना जानते हो, और जैसे अनाउंसमेंट होती है ना एयरपोर्ट पे, स्टेशन पर, तो वो टेस्ट में आते हैं। वो कंप्यूटर बोलेगा और जो उसने बोला वो आपको लिखना है, जिससे कि पता पड़े कि आपने ठीक लिखा। ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं। अच्छा, टेस्ट में एक तरीका होता है, जब आप मेरा टेस्ट ले रहे हो तो आपको मैं समझा सकती हूँ, भाई हम तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, सेवा कर रहे हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते हैं। आप कहेंगे ठीक है चलो 10 मार्क ज्यादा दे देता हूँ। व्यक्ति को तो आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन वहां पर टेस्ट वाले में कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता, ऐसे बस दीवारें हैं, लोहे की दीवारें, जेल जैसी, और कंप्यूटर ही कंप्यूटर, और कैमरे लगे हुए हैं, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं सकता, और टाइम ही नहीं होता है। और आपने एक बार क्लिक कर दिया कंप्यूटर पे, बस वो फाइनल। कागज पे तो आप चेंज कर सकते हैं, उस पर चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये नियम अभी 2015 से शुरू हुआ है और हम तो 25 साल से वहां रह रहे है ना, तो 25 साल से बाबा की सेवाएं चल रही, तो पहले थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी, लेकिन अब तो ये नया नियम शुरू हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि जिन्होंने अब तक बाबा का ज्ञान सुन लिया, इतनी अच्छी तरह से सब काम हो गए, तो रावण जो है कि और ज्यादा आत्माएं ना जाने, क्योंकि हमारे संपर्क में तो आना मुश्किल हो जाएगा ना उनको, तो ये लॉस बन रहे हैं। तो हमें भी माया का इस तरफ से, और हमें भी लड़ना तो पड़ता है, युद्ध स्थल है ना पांडवों और कौरवों की, तो वहां नहीं है, वहां तो पांडवों और यादवों की लड़ाई है। क्योंकि एक तो पहले तो उनको खाली करना है सब लोगों को, तभी तो बॉम्ब चलाएंगे, हम वहां बैठे होंगे बॉम्ब थोड़ी चलेंगे, बॉम्ब तो चलाना है ना, तो हमको तो निकालना है ना कैसे ड्रामा नहीं, लेकिन हम अभी तो नहीं निकलेंगे, इतना जल्दी तो नहीं निकलेंगे ना, काम तो कुछ तो करेंगे। तो फिर बाबा के साथ हर बात को समझ के और ड्रामा के राज को समझ करके, आप सोचिए, आप जितने भी सेंटर्स में जाते हैं, आप खुद भी हैं, कौन है जो 8-8 घंटे बैठ करके रोज पढ़ाई करे टेस्ट देने के लिए? कोई ऐसे हैं ब्रह्मा कुमारी? हाँ, वो आजकल वो पीजी डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन और ये सब एमएससी ये सब, लेकिन वो तो फिर भी हमारा ही ज्ञान है ना। तो अभी अक्टूबर में यहां भी आना था, बाबा से मिलना है, लेकिन अगर अभी वो एग्जाम नहीं देके आते तो वापस तो दोबारा जा ही नहीं सकते। तो एग्जाम देने के लिए मतलब डिसीजन लेना था, या तो अभी एग्जाम दो या फिर फरवरी में जाकर के, लेकिन फरवरी में भी टाइम तो बहुत कम था। तो लॉ, सारी हिस्ट्री पूरी की पूरी, और उसके बाद में लैंग्वेज। तो दिन रात पढ़ाई पढ़ के, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, सोना भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बस पढ़ के टेस्ट दिया और 96% मार्क्स ले लिए। काफी है ना, काफी है ना, थोड़े तो उनको भी देने पड़े, और वो भी मतलब वो पढ़ाई बढ़ते हुए मुझे बिल्कुल कभी कोई चेयर पर बैठ बैठ के थक गई, फिर जमीन पर, फिर लेट कर, फिर उल्टे होकर पे, क्योंकि पहले तो बचपन में तो ऐसे पढ़ते थे ना, लेकिन अभी तो मुझे याद आया कि जब मैं 8th क्लास में थी, तो ये तो शायद ये समय था 73 या 74 का था, तो उस समय हमारी जो हिस्ट्री की टीचर थी उसने, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसका इतना छोटा सा साइज था, हाईली स्ट्रिक्ट थी, तो उसने उस समय हमारी हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था जिसको कहते थे रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। तो वो मुझे हिस्ट्री इतना खराब लगती थी, मैं कहती थी किस लिए मुझे याद करना है, उसने उसको मारा, इतने लोग मर गए, मर गए, तो एक मैं ही थी। उसने मुझे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक अकेले स्कूल में रोके रखा कि तुमको ये सारी रशिया की बोल्शेविक क्रांति याद करके मुझे सुनानी है। मैंने उसको नहीं सुनाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं होती थी, और मैंने नहीं सुनाई तो उसको मुझे जबरदस्ती पास करना पड़ा, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो सब ठीक था, हिस्ट्री से मुझे एलर्जी थी। मैं कहती थी ये मरा वो मरा मैं क्यों याद करूं, मर गए तो गए। तो समझ नहीं आता था कि क्या पर्पस क्या है इस हिस्ट्री का। तो मुझे वो मैडम याद आई, और वो सारा याद करना पड़ा अभी, और वो भी लेकिन नहीं, मैं अभी आगे जो बता रही हूँ सुनिए। तो उस समय उसने याद कराने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अंदर नहीं गया। लेकिन 25 साल से वहां रहते रहते हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और हिस्ट्री जो है वो त्योहारों के रूप में मनाई जाती है, जैसे 15 अगस्त मनाते हैं ना, तो सारी कहानी दोहराएंगे रेडियो पर, टेलीविजन पे, ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री हुए, सरदार पटेल हुए, ये सब हुआ। तो 25 साल से रहते रहते सुनते सुनते बिना पढ़े वैसे ही सब याद हो गया। तो मैं यही कहती थी कि हम जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसका तरीका गलत है। अगर हम उसको जिए, उस समाज में जिए, तो हमें पता पड़ जाता है, तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी मुझे ज्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ा, सिर्फ नाम याद करने पड़े थोड़े से, बाकी तो सब पता ही पड़ गया था इतने साल से रहते। तो अब हमको किसी भी प्रकार की, जिसको हम कहते हैं ना लिमिट, हम सेट हो गए, हम सेवा कर रहे हैं, इतना सेवा बढ़ रही है, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज का फाइनल नहीं है, सब चेंज होना है। तो वो है कालों का काल याद रखना, समय। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक ही चीज परमानेंट है, स्थाई है, और वो है परिवर्तन। पैराडॉक्स है ना, सबसे स्थाई चीज दुनिया में है परिवर्तन, परिवर्तन कभी नहीं रुकता है। तो अगर हम किसी भी चीज से अटैच नहीं हो कि अरे ये क्या हो गया, हम तो नहीं, तो बाबा हमको यूज कर सकते हैं, तो हम लाइट रहेंगे। और उसमें भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक स्टेज में प्रोग्रेस जो है वो ऐसे नहीं होती, वो ऐसे होती है। ऊपर जाने को प्रोग्रेस कहते हैं। तो ऊपर जितना ऊपर जाएंगे, अभी अगर आप यहाँ, ये जो यहाँ मंदिर है ना माउंट पे, क्या नाम है उसका, भैरव माता, हाँ, आदर देवी मंदिर है, ये सब अभी वहां पर आप जो अपनी अटैची पांडव भवन में लाए हैं, वो अटैची उठा के जाएंगे भारी पड़ेगा ना। हिमालय पर जाना है, अपना रेफ्रिजरेटर लेके जाएंगे, गैस लेके जाएंगे, तो जितना ऊंचा जाएंगे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बाबा को भी हमको ले जाने के लिए, आखिर जो हमसे फिर कौन सी सेवा कराएगा, सिर्फ संकल्पों वाली सेवा रह जाएगी, क्योंकि बाकी सेवाओं के लिए कई कुछ चाहिए, वीजा भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, मकान, और संकल्पों के लिए आप यहां बैठ के पूरे विश्व की सेवा कर सकते हो, साक्षात्कार करा सकते हो। तो बस संकल्प तक पहुंचाने के लिए ये सारी दुनिया की परिवर्तन आएगी, बाकी सब छोड़ो। अभी ट्राई करिए। तो योग तो लगाएंगे ना? हाँ, अच्छा, नहीं उनको शायद दूध पीना होगा ना, ना? तो इसलिए संकल्प ये फाइनल जो है ब्राह्मणपन का कर्तव्य है कि संकल्पों द्वारा, संकल्प शक्ति जो सूक्ष्म शक्ति है, ब्राह्मणपन का कर्तव्य है कि संकल्प के यंत्र को मैक्सिमम यूज करना सीखना और यूज करना, एक्सपेरिमेंट माना यूज करना, उसको प्रयोग करना। संकल्प ब्राह्मण पने में ही ये हो सकता है। वो जो दुनियावी ब्राह्मण है वो ज्यादा मुंह को यूज करते हैं, और हम ब्राह्मण, लेकिन क्या हम उसके लिए इतने अच्छी तरह से इंटरेस्टेड हैं? टोली द्वारा भी हम बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, मुख द्वारा भी करते हैं, लेकिन संकल्प द्वारा, अपने भाव, संकल्प माना एब्स्ट्रैक्ट संकल्प नहीं, मेरी भावना। तो बाबा की जैसी भावना है, अच्छा मैं कुछ भी नहीं करूं, लेकिन अब मैं ये चेक करूं, आज जैसे बाबा ने कहा, आपकी जो सब शक्तियां हैं, आठ शक्तियां और मंत्रिमंडल, आपके अधीन है या आप उसके अधीन हो, कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को ही चाहिए मेरे बच्चे बहुत स्वीट हो, वेरी स्वीट, एकदम प्योर हो। आपने जब से बाबा को सुना है, बाबा ने कोई कंडीशन रखी है? आप इतने पैसे लाओ, इतने सेवा करो, कभी किसी ने देखा है बाबा को कंडीशन रखते हो? नहीं, बस बाबा को चाहिए मैं अच्छा बनूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नई दुनिया में हर एक मेंबर जो है, उसका जो सिटीजन है, सतयुग के सब नागरिक कैसे होंगे? स्वीट। हमेशा बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कितने स्वीट हैं। तो इतना स्वीट बनने के लिए जो भी चीज मुझे बिटर बनाती है, कड़वाहट पैदा करती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कभी किसी चीज की इच्छा होती है, सेवा की इच्छा, अच्छी सेवा की इच्छा हो, नाम की इच्छा हो, मान की इच्छा हो, कुर्सी की इच्छा हो, सब छोड़, बिटर अगर होते हैं ना इससे, उसको छोड़ना है। फिर कई बार ऐसा लगेगा, अरे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिवाय बाबा के सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके स्वीट बनेंगे। अब ये तो रियल है ना। तो ऐसी स्वीटनेस के लिए अभी इस दिवाली पर, सच्ची सच्ची दिवाली पर हमको मिठाई तो खानी है ना, तो अगर हम खुद ही मिठाई बन जाएंगे तो कितना मुख मीठा हो जाएगा ना। तो मुख मीठा रहे, मुख कभी कड़वा ना रहे। अभी हम सब इतना सब कुछ खर्चा करके, सब अपने सुख आराम छोड़ करके, इतनी बड़ी सभा में इकट्ठे होकर के वेट करते बैठते हैं, वो किस लिए? वो बाबा का मीठा मुखड़ा देखने के लिए। अगर बाबा एक भी कड़वी मुरली चला दे तो 5 साल तक तो नहीं आएगा कोई, एक भी चला दे, वो ऐसे कर देना अगर बाबा एक बार। करने वाले तो बहुत बातें, हम कोई कम थोड़ी गलत काम करते हैं, तो लेकिन मिठास का जो सागर है, उसका मीठा मुखड़ा देखने के लिए हम आते हैं, तो उसका भी हमारे प्रति बस अभी यही आशा, और कोई आशा नहीं रही बाबा। हम तो बन तो गए हैं, ना, जो समझते हैं कि हाँ मैं 80% से ज्यादा मीठा बन गया हूँ पहले के हिसाब से। कम बोला क्या मैंने? 90 बन गए हा? मतलब बिल्कुल कड़वाहट नहीं रही, कोई कुछ भी करे लेकिन ऐसा नहीं लगता, नफरत नहीं आती। ये जो नफरत है ना अंदर से, उसको तो बिल्कुल दिवाली में जलाना है। कैसी भी, चाहे वो मेरा एकदम स्पष्ट रूप से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नुकसान भी कर रहा है, लेकिन वो जो नफरत है उसको बहुत गहरा पकड़ो। ये क्यों है? ये जो संस्कार है इतने जन्मों का, वो अभी के लिए नहीं आ रही। अभी तो बेचारे ने थोड़ा सा गलत किया, लेकिन वो आदत पड़ गई है नफरत करने की, वो संस्कार जो है इमर्ज हो जाता है, उसको तो बिल्कुल खत्म, घृणा करने की दूर हो जाने, किसी से मन खट्टा कर लेने की, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे दिवाली पर मीठा बन सकते हैं। अच्छा, जो 80% से ज्यादा बन गए हैं ऐसे हाथ खड़ा करें। हाँ लगता है 70%। अच्छा ठीक है, अभी जो, क्योंकि आप तो टोली खिलाते हैं ना सबको, तो 100% जो बन गए हैं मीठा, नहीं 100 थोड़ी कह सकते हैं, 99। हाँ नहीं, अच्छा जो 50 तक पहुंच गए हैं, 50% मीठा 50% कड़वा, इसलिए दूसरों को अनुभव नहीं होता लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि मैं मीठा बन गया हूँ। ऐसे 50 वाले हैं, 60 वाले हैं, 60 70। तो अभी क्या करना है? उससे भी कम परसेंटेज, वो तो फिर शोभा नहीं देता ना, इतना तो शोभा नहीं देता। अभी बस अगर ये याद रखेंगे ना, कभी भी मैं आत्मा यहाँ से जा सकती हूँ, कभी भी। तो इसलिए किसी भी चीज के कारण अपनी जो शुभ भावना है, अवस्था है, अपना जो प्रेम है, अभी मैं कल चली गई तो मेरे को ये 50 लोग जिनके साथ आज मैंने झगड़ा किया है वो कैसे याद करेंगे? अच्छा चली गई, कल तो झगड़ा कर रही थी, जाना ही था उसने, अच्छा ही हो गया, तो अच्छा लगेगा क्या? वहां भी शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए कभी भी कुछ भी, बस फाइनल ड्रॉप इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिले सब कुछ मिला, और बाबा ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा को प्राप्ति, सर्व प्राप्ति समझना, सर्वस्व समझना, ये है बुद्धि, दिव्य बुद्धि। परमात्मा ही सर्व प्राप्ति है, बाकी कुछ प्राप्त हो तो भी अप्राप्ति है, ये है दिव्य बुद्धि। बस अब ऐसे पकड़ के मेरा बाबा, और ये जो गीत गाते रहेंगे ना दिन, बस मेरा, बाकी सब चला जाने दो, तो मीठे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी प्यार से ये गीत गाइए, बाबा तुम कितने अच्छे हो, सुना था ना शुरू में गीत, बहुत प्यार से गाओ ऐसे, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। चलिए गाइए, 1 मिनट के लिए योग भी हो जाएगा। सब गाए, बाबा तुम कितने अच्छे हो, ऐसे ऐसे, और वो मेरा है। हाँ बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सब कहते हैं कि एक तुम ही नहीं के तारे हो, बाबा तुम कितने अच्छे हो। अभी ये कहते हुए महसूस हो रहा मैं कितना स्वीट बन गया हूँ, है ना। तो बाबा तुम कितने अच्छे हो, कहते कहते आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि बाबा कहेंगे बच्चे तुम कितने अच्छे हो, है ना। बस ये सुनाई दे कि बाबा कह रहे बच्ची तो कितनी अच्छी है, तो वो कैसे सुनाई देगा, ब्राह्मण परिवार के मुख से सुनाई देगा। हम अपने मुख से बाबा की तारीफ करते हैं, बाबा ब्राह्मण परिवार के मुख से तारीफ करेगा बच्ची तो कितनी अच्छी है। बाबा ऐसे थोड़ी सारा समय दादी गुलजार का मुख लेके आएगा, उसको कितने मुख है। तो आप सुबह सुबह से बोलना शुरू करो बाबा तुम कितने अच्छे हो, फिर आप जा रहे होंगे ये बोलेगा अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, ठीक है। ओके ओके हैप्पी, मुंह खोली टोली आ जाएगी। ओके गुड, ओम शांति।